करवट बदल रहा, युग ने दी अंगड़ाई,
जाग उठी भारत की नारियां, शिव से शक्ति पाई,
वंदे मातरम करे जगत,
श्रद्धा भाव समर्पण,
करें दृष्टि परिवर्तन, नारी को नहीं नारित्व को देखें, एक वैचारिक क्रांति।
नमस्कार, मैं हूं इस प्रोग्राम का सूत्रधार अमन यतन वर्मा, और आज हमें हमारे सवालों के जवाब देने ब्रह्मा कुमारी के गॉडलीवुड स्टूडियोज में हमारे साथ हैं नील क्लिनिक और आईसीयू की डायरेक्टर ब्रह्मा कुमारी की डॉक्टर शुभदा नील जी। डॉक्टर शुभदा एक जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, अपने करियर में कई सफल आयामों तक पहुंची डॉक्टर शुभदा जी एक खास तरह का कार्यक्रम गर्भ संस्कार चलाती है। इनका मानना है कि गर्भ अवस्था वो अवस्था होती है जिसके दौरान माँ और शिशु दोनों का नया जीवन शुरू होता है, और यही वो समय होता है जब माँ को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ और संतुलित होना जरूरी होता है। अपने ऐसे ही कई प्रयासों के लिए डॉक्टर शुभदा को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा डॉक्टर शुभदा नील जी का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, थैंक यू सो मच। क्या होती है नारी का आध्यात्मिक स्वास्थ्य, विस्तार से चर्चा करेंगे इस विषय पर, लेकिन उससे पहले नारी के स्वास्थ्य को लेकर हम आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। अच्छा बोलो,
सुबह हो या शाम, धूप हो या छाव, जीवन की सभी जिम्मेदारियों में सफल होने के लिए नारी हमेशा प्रयासरत रहती है ताकि उसके अपनों पर कोई आंच न आए। आज की नारी घर और कार्यालय दोनों कुशलता से करती है। NSW विभाग से पुरुषों के स्वास्थ्य पर एक रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों की आयु महिलाओं से औसतन 6 साल कम है। नारी पुरुषों की तुलना में शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत है, लेकिन सभी जिम्मेदारियों के बीच नारी अपनी सेहत को नजरअंदाज करती है, और यही कारण है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाओं के गिरते स्वास्थ्य के कई मामले हमारे सामने आते हैं, जैसे डिप्रेशन, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, हड्डियों में कमजोरी और भी कई रोग। इसीलिए महिलाओं का स्वास्थ्य आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। शारीरिक स्वास्थ्य से भी अधिक नारी को मानसिक रूप से सबल होने की आवश्यकता है। कैसे बनाए नारी को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सबल और स्वस्थ?
डॉक्टर शुभदा जी, यदि हम WHO की स्वास्थ्य की जो परिभाषा अगर बात कहें, तो उन्होंने बताया है कि स्वस्थ होने का अर्थ होता है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर भी आपको स्वस्थ रहना चाहिए। आपके अनुसार क्या है नारी स्वास्थ्य की सही परिभाषा, बताइए हमें।
ये बिल्कुल सही है कि नारी स्वास्थ्य का अर्थ एक रोग मुक्त होना नहीं होता है, लेकिन इसकी सही परिभाषा ये है कि एक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ आध्यात्मिक और आत्मिक रूप से भी स्वस्थ होना होता है। आध्यात्मिकता, आत्मिकता माना खुद को जानना और खुद को स्वस्थ रखना। यदि हमारी आत्मा स्वस्थ रहेगी तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ हो पाएंगे। यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ है तो शारीरिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे।
स्वस्थ होना केवल आपके शरीर पर ही निर्भर नहीं करता है, बल्कि आपकी आत्मा कितनी स्वस्थ है उस पर भी निर्भर करता है। तो नारी के आध्यात्मिक स्वास्थ्य के और क्या महत्व है? और कैसे रखे वो खुद को आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ, जानेंगे हमारी अगली खास मेहमान से, जो महिलाओं के स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जल्दी मिलेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आखिर मेरा वजन कम होते गया और आज मैं
अबला जीवन, हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, तेरी चमड़ी का सौदा होता है, तुम वस्तु बन गई हो,
मुझे शक्ति दो,
कमजोर बताना बंद करो, ये फूल नहीं चिंगारी है, इसे सताना बंद करो, सबला भारत की नारी है, धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया, हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर नारी के शरीर को ना देख उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। देखना ना भूलिएगा, विनर ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट नेशनल अवार्ड, नारीत्व दर्शन। आओ करें दृष्टि परिवर्तन, नारी को नहीं नारीत्व को लेके एक वैचारिक क्रांति।
नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ नागालैंड से नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज में मास्टर्स डिग्री से सुशोभित इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी, आरोग्य मंदिर और डिवाइन हेल्थ फाउंडेशन द्वारा कई सम्मान से नवाजी डॉक्टर शालू गुप्ता जी, तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। आइए भाई डॉक्टर शालू, आप हमारे शो पे आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला और आप यहाँ पे आए। वैसे तो आज भारत की नारी आकाश की बुलंदियों को एक तरह से छू रही है, लेकिन तब भी अगर हम बात करें तो आज भी महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में काफी शारीरिक परेशानियां जो हैं उसका सामना कर रही है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर इसकी वजह क्या है।
देखिए, इसका मुख्य कारण है अशिक्षा। यदि हम नारी के अमूल्य के रूप की पहचान नहीं कर पाएंगे तो नारी के स्वास्थ्य की परिभाषा देना बहुत ही कठिन हो जाएगा। जो नारियां शिक्षित हैं वो अपने घर और ऑफिस को मेंटेन करने में ही बहुत बिजी हैं। वो सबको खुश तो रख पाती हैं, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने घर को, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती। इसका कारण ये है कि वो एक समाज के सामने तो एक बहुत ही सफल नारी है, परंतु अंदर से वो बीमारियों का शिकार हो जाती है। इसी कारण स्ट्रेस और एंग्जाइटी जैसी बीमारियां, क्योंकि कुछ परेशानियां ऐसी हैं जो हम समाज के सामने नहीं कह सकते और वो अंदर ही अंदर उन परेशानियों का शिकार हो जाती हैं।
कहने का मतलब ये हुआ कि हमें सबको इस बात की शिक्षा देनी होगी कि हमें नारी को स्वस्थ रखना है और स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने तरफ से क्या क्या कदम उठाने चाहिए।
ये जागरूकता ही सबसे जरूरी है,
शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। सुबह से लेकर शाम तक हमारी माँ, पत्नी, बेटियाँ और बहनें इसी तरह सबको खुश करने में कहीं ना कहीं खुद को नजरअंदाज करती आई। महिलाओं की ऐसी ही कुछ समस्याओं को हमने जानने की कोशिश की, आइए सुनते हैं उनकी समस्याओं के बारे में।
मैं एक वर्किंग महिला हूँ। ऑफिस में प्रेशर होने के कारण मेरा पूरा रूटीन ही अपसेट हो जाता है। खाना खाने का टाइम ही नहीं मिलता, आराम करने का समय भी नहीं मिलता, कुछ करने या सोचने के लिए भी वक्त नहीं मिलता। इस पर मेरे पूरे परिवार की शिकायत रहती है कि मैं उनके साथ सही वक्त नहीं गुजारती और इन सब बातों को लेकर मैं काफी डिप्रेस रहती हूँ।
मेरा नाम नीला है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरे घर के सभी काम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, आराम का सवाल ही नहीं उठते हैं। अब तो मेरे कमर और पाँव का घुटने का दर्द भी चालू है। सभी लोग कहते हैं आराम तो करो, मगर कैसे समझ में नहीं आते।
मेरा नाम कविता पंकज नायक है, मैं गर्भवती हूँ। शुरुआत से ही मुझे थायराइड का प्रॉब्लम था, अभी मुझे प्रेगनेंसी के बारे में थोड़ा डर लगता है, मुझे क्या करना चाहिए?
एक परफेक्ट वुमन बनने के चक्कर में महिलाएं अपने ही स्वास्थ्य को अनदेखा कर देती हैं। डॉक्टर शालू, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्यों होती हैं ये सारी की सारी परेशानियां महिलाएं, बताइए।
देखिए, हमने इन सब परेशानियों में यही सुना कि महिला के पास समय का अभाव है। महिला के पास समय ही नहीं है कि वो अपने लिए कुछ भी कर पाए। जब तक महिला अपने खान पान के लिए जागरूक नहीं होगी, अपने स्वास्थ्य के लिए खुद जागरूक नहीं होगी, तब तक मैं किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे पाएगी। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सात्विक भोजन। यदि महिला अपने लिए सिर्फ केवल आधे घंटे का समय भी निकाल पाए, सुबह सही वक्त पर उठना, सही वक्त पर सोना, रेगुलर व्यायाम एक्सरसाइज और थोड़ा बहुत मेडिटेशन, जो सबसे ज्यादा जरूरी है।
लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि जब महिलाएं जब काम करती हैं तो सुबह उठना, रात को सोना, काम के बीच में कहाँ वक्त निकलता है?
आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन स्वास्थ्य किसी चीज को नहीं समझता। ये किसी न किसी तरह कर समय तो निकालना ही पड़ेगा। यदि घर की महिला ठीक नहीं है तो घर में कोई भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा। देखिए, एक बहुत अच्छी बात है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पियेंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी, और जैसी करेंगे संगत वैसी हो जाएगी रंगत। यदि हम अच्छे विचारों से भोजन ही नहीं बनाएंगे तो खाने वाले को भी नहीं लगेगा, और यदि हम अच्छे अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे तो घर में कोई खुश नहीं रहेगा। तो यदि घर की महिला खुश है, स्वस्थ है, तो पूरा घर ही स्वस्थ रहेगा।
अगला सवाल यह है कि परेशानियों से बचने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी महिलाओं को? ये जितनी सारी परेशानियां हो रही हैं तो क्या सलाह देंगी?
भोजन, व्यायाम और राजयोग मेडिटेशन, ये स्वस्थ और खुशनुमा जीवन के तीन आधार स्तंभ माने गए हैं। राजयोग मेडिटेशन मन और आत्मा दोनों को स्वस्थ रखना है। यदि हमारा मन स्वस्थ है तो विचार स्वस्थ रहेंगे। आज जो मन है बहुत व्यर्थ सोचता है, छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखता है, तो राजयोग मेडिटेशन से इन सभी बातों को हम कैसे पकड़ के ना रखे, उदास ना हो, हम हमारी हमेशा खुश रहे, सदा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहे, बातों को कैसे हल्का करें, ये हमें समझ मिलती है, और जिससे हमारा मन बहुत स्वस्थ रहता है। और यदि हमारा मन स्वस्थ है तो हमारा तन
हमेशा स्वस्थ है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इन सब चीजों में हर चीज आप करती हैं अपने लिए?
हाँ, ये सब कर रही हूँ, प्रैक्टिकली अनुभव किया और उसके बाद ही सभी को बता रहे हैं, क्योंकि
और उसका पूरा जो इफेक्ट की आप बात कर रही है वो डेफिनेटली हुआ है, पक्का आपके अपने ऊपर हुआ है।
मैंने अपने घर परिवार में भी देखा, और जैसे मैं एक डॉक्टर भी हूँ तो हॉस्पिटल में भी मैंने देखा कि जो भी हॉस्पिटल में स्टाफ है, पहले इतना सब इरिटेशन रहता था और वो इरिटेशन फिर स्टाफ के ऊपर और बच्चों के ऊपर निकलता था। तो अभी देखा कि स्टाफ भी बहुत खुश रहता है क्योंकि वो इरिटेशन उनके ऊपर नहीं निकलता है, बच्चों के ऊपर नहीं निकलता है।
तो अभी बच्चे भी खुश हैं, स्टाफ भी खुश, और इस समय हम भी बहुत खुश हैं कि आप यहाँ पे आए। बहुत खुश। अब हम सुनेंगे कुछ ऐसी बहनों के अनुभव जिन्होंने अपने जीवन में ध्यान को अपनाया और क्या बदलाव आए उनके जीवन में। चलिए सुनते हैं उनसे।
पिछले साल तक मेरा वजन 80 किलो के करीब था। एक दिन मैंने ठान लिया कि मुझे अपने आप में बदलाव लाना ही है, और इसके लिए मैंने ध्यान, योग और प्रॉपर डाइट तथा एक्सरसाइज के सहारा लिया। आखिर मेरा वजन कम होते गया और आज मैं अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव महसूस करती हूँ।
एक तरफ परिवार की देखभाल और दूसरी तरफ कार्य व्यवहार, दोनों में मुझे तोड़ निभाने के लिए फिट रहना भी जरूरी है। तो इस फिट रहने के लिए मैं नियमित रूप से मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ, साथ साथ मेडिटेशन भी करती हूँ।
अपने जीवन में इन्होंने तो स्वास्थ्य को चुन लिया और जीवन के प्रति इनकी सोच सकारात्मक होने लगी। डॉक्टर शुभदा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके क्या विचार हैं नारी के स्वास्थ्य और सकारात्मकता के बारे में।
नारी के स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो नारी में नेगेटिव हार्मोन्स की वजह से, जैसे कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर है, स्तन का कैंसर, यूट्रस कैंसर, थैली का कैंसर, ये काफी ज्यादा फैल रहे हैं। आज हम देखते हैं हर 7 मिनट में एक थैली के कैंसर की वजह से, और हर 10 मिनट में ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर की वजह से हर रोज भारत में एक औरत की मृत्यु हो रही है। और WHO का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जागतिक आरोग्य संगठना है, उनका यह मानना है कि सन 2025 तक हर 4 मिनट में सर्वाइकल कैंसर, जो थैली का कैंसर है, और हर 7 मिनट में ब्रेस्ट कैंसर, स्तन के कैंसर से हर रोज एक औरत की मृत्यु होने वाली है। और उनका यह भी मानना है कि सन 2020 तक भारत डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, इन और कैंसर, डिप्रेशन, इन जैसे बीमारियों की राजधानी होने वाला है।
सबसे ज्यादा हमारे देश में 2020 में जो आंकड़े बता रहे हैं।
यदि हम इन सभी से बचना चाहते हैं तो सकारात्मकता पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग से शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है। और यदि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है तो जीवन के हर कार्य में हम निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं, हर कार्य हमें आसान लग सकता है।
अक्सर हम यही देखते हैं कि नारियों को सही ढंग से पोषण नहीं मिलता है और सही ढंग से उनकी देखभाल नहीं होती है। वो जो उनके घर वाले हैं, जिस घर में वो रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में वो रहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी ताकि वो अपने घर में जो नारियां हैं, जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, उनकी देखभाल ज्यादा ढंग से करें।
एक तो हमें जो बेटा बेटी दोनों को समान संभाल करनी चाहिए बचपन से लेकर, हमें दोनों के लिए जो भी है उनके स्वास्थ्य की तरफ, सेहत की तरफ, उनके एजुकेशन की तरफ पहले से ही दोनों को समान तरीके से देखना चाहिए।
किसी भी तरह का भेदभाव
नहीं होना चाहिए।
आप इसके बारे में क्या कहेंगे?
देखिए, हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश। यदि हम अपने शरीर को, यदि हम अपने जीवन शैली को ऐसा बना लें जो प्रकृति पद्धत हो, हमारा खान पान, हमारी वाणी, हमारी सोच प्रकृति के अनुकूल चले, तो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स का बहाव निकल सकता है। यदि हम सप्ताह में एक दिन धूप स्नान लेना, मिट्टी का लेप लेना, भाप स्नान लेना, मिट्टी के गड्ढे में दबना, मिट्टी की पट्टी लेना, बस्ती क्रिया, ये सब करें तो हमारे शरीर से असाध्य बीमारियों का भी इलाज हो सकता है।
ये सब जो आपने बताया उससे ये सारी परेशानियां, प्रॉब्लम्स निकल सकती
हैं। अब निकल सकती हैं। इसलिए कहा है, मिट्टी ओढ़ना, मिट्टी बिछोना, मिट्टी दाना पानी है, मिट्टी ही तन बदन हमारा, यही सबकी कहानी है।
क्या बात, क्या बात। यदि नारी अपनी सेहत को लेकर जागरूक हो जाए, अपने जीवन में ध्यान और योग को अपनाए, तो वो आने वाले समय की तस्वीर बदल सकती है। वो हमें एक नया समाज, नई नींव और सकारात्मक युवा प्रदान कर सकती है। और भी कई ऐसी बातें जानेंगे हम ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर शुभदा नील जी और डॉक्टर शालू गुप्ता जी से, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप प्लीज कहीं मत जाइए। आपसे दो सवाल मैं पूछना चाहूंगा। पहला सवाल ये है कि हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, ये रहा पहला सवाल। और दूसरा ये कि गर्भ संस्कार क्या होता है?
ब्रह्मा कुमारी से प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निःशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं।
का दर्शन कराए, अर्थात कि नारीत्व शक्ति के बारे में बताए, तो वो बेटा अपनी बहन के साथ फर्क नहीं करेगा, वो भाई अपने बहन के साथ फर्क नहीं करेगा, उसको बचपन से ही उसको ऊंची उस देवी के रूप में।
आप भी देखिए
नारीत्व दर्शन, नारी को नहीं, नारीत्व को नहीं, एक वैचारिक क्रांति।
एक वैचारिक क्रांति।
नमस्कार। ईश्वर ने नारी को कई गुणों से सुसज्जित किया है, जिसके कारण उसका महत्व हम सब कभी भुला नहीं सकते। जैसे प्रेम और त्याग, अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण आज भी वो हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन तब भी समाज में कुछ रूढ़िवादी विचार हैं जो पुत्र और पुत्री में भेद करते हैं। बचपन से ही बेटे पर विशेष स्नेह और देखभाल मिलती है, जबकि बेटी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, फिर चाहे वो बात तो शिक्षा की या स्वास्थ्य। हमारे ये रूढ़िवादी समाज क्यों भूल जाता है कि उनको और उनकी संतान को जन्म देने वाली एक नारी ही है। यदि वो स्वस्थ नहीं होगी तो वो स्वस्थ संतान को जन्म कैसे दे। नारी स्नेह और आदर की पात्र है। यदि आप उसके स्वास्थ्य को यूं ही नजरअंदाज करते रहेंगे तो हमारा भावी समाज कुपोषित और रोगी होगा। इसलिए समझें नारी स्वास्थ्य के महत्व को। आगे बढ़ने से पहले हमारे बीच बैठी बहनें जो हैं, हम उनसे सेहत को लेकर उनके अनुभवों को सुनते हैं। आइए उनसे बात करें।
मैं डॉक्टर कनकलता मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजी।
जी।
मेरी एक पेशेंट अपनी प्रेगनेंसी में बहुत सवाल करती थी। मैंने उसे ब्रह्मा कुमारी के गर्भ संस्कार प्रोग्राम से जुड़ने की सलाह दी। आज उसके पास एक बेटी है और वो अपनी बेटी से बहुत सेटिस्फाइड है। वो कहती है परिवार में, पड़ोस में और स्कूल में उसकी बेटी सबसे लाडली, सबकी लाडली।
मैं बचपन में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में योग शिक्षा ली थी और हर दिन आध घंटा ध्यान भी करती हूँ। इससे मुझे सारा दिन सकारात्मक रहने में बहुत ताकत मिलता है। यही नहीं, अपने बच्चों को भी मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए मैं उन्हें भी ध्यान करवाती हूँ। इससे वो बहुत आनंदित रहते हैं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। डॉक्टर शुभदा जी, आपसे दो सवाल मैं पूछना चाहूँगा। पहला सवाल ये है कि हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, ये रहा पहला सवाल। और दूसरा ये कि गर्भ संस्कार क्या होता है जी, और माताओं के लिए ये किस तरह से लाभदायक है, ये बताइए।
राजयोग मेडिटेशन से हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। राजयोग मेडिटेशन, मेडिटेशन माना मन को हील करना, कम फ्रॉम द वर्ड मेड्री, लैटिन वर्ड मेड्री, मेड्री। तो मेडिटेशन माना अपने मन को हील करना। आज जो मेरा मन बहुत दुखी है, अशांत है, मेरा मन मेरा होने के बावजूद मेरे कंट्रोल में नहीं है, कोई मुझे गुस्सा दिलाता है या कभी मुझे अंदर से गुस्सा आता है और गुस्सा आने से काफी सारी, जैसे हमने देखा, शारीरिक बीमारियां पैदा होती है। तो राजयोग मेडिटेशन से हम मन को कंट्रोल करना सीखते हैं, कोई हमें गुस्सा दिला नहीं सकता है या फिर मुझे अंदर से गुस्सा नहीं आ सकता है।
मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि मेरा मन और मतलब कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहता है। दूसरा सवाल ये है कि ये जो गर्भ संस्कार होता है माताओं के लिए ये किस तरह से लाता है।
डिवाइन गर्भ संस्कार हर एक गर्भवती माता को न केवल शारीरिक लेकिन साथ साथ सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन प्रदान करता है, जिससे गर्भ में पल रहे जो शिशु में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक गुण विकसित होते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि यदि माँ फिजिकली हेल्दी है, मेंटली हेल्दी है, तो बेबी भी फिजिकली मेंटली हेल्दी रह सकता है और इसीलिए फिर उसके अंदर जो गुण है, जो संस्कार है, वो डेवलप हो जाते हैं। तो एक स्वस्थ और संस्कारी जो माँ है वही स्वस्थ और संस्कारी बच्चे को जन्म दे सकती है। और खास करके डिवाइन गर्भ संस्कार प्रोग्राम में हमने ये देखा, सभी जिन्होंने डिवाइन गर्भ संस्कार प्रोग्राम को अपनाया उनमें वो फिजिकली और मेंटली भी हेल्दी थी और उनमें नॉर्मल डिलीवरी का रेट भी ज्यादा था।
बहुत बहुत शुक्रिया आपके विचारों के लिए डॉक्टर शालू। अब आपके क्या विचार हैं, यही सवाल जो मैंने उनसे किया था।
गर्भ संस्कार एक बहुत ही इफेक्टिव प्रोग्राम है, मैंने इसे खुद अपनाया है और जो मेरा बच्चा है वो बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही शांत, बहुत ही प्यारा है।
अच्छा।
इसलिए मैं इस बात को पूर्ण रूप से सहमत हूँ इस बात
जी।
और बात ये है कि अगर नारी, जैसे कि हमने अपनी बहनों को भी सुना, हमने ये सुना कि नारी जब तन मन अंदरूनी तौर से स्वस्थ है तो सबका ध्यान बहुत अच्छे से रख पाती है, अपने काम में भी सक्षम है और सबसे आगे है।
बिल्कुल। और आसपास के जो लोग हैं उन लोगों से गुजारिश है कि अगर औरत को थोड़ा सा समय उसके अपने लिए दे दिया जाए तो बहुत मतलब एक तरह से पूरे फैमिली की या पूरे समाज की कायापलट हो सकती है।
बिल्कुल सही।
शारीरिक व्यायाम आपको केवल शारीरिक रूप से ही स्वस्थ रखता है, क्योंकि आपका कार्य केवल शारीरिक बल पर ही नहीं बल्कि आपके मानसिक मनोबल पर भी निर्भर करता है। और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए यदि आप ध्यान का सहारा लें तो न केवल आप मानसिक संतुष्टि पाते हैं बल्कि आपको आध्यात्म की भी प्राप्ति होगी, जो आपको न केवल स्वस्थ बनाएगा बल्कि आपके जीवन को भी सकारात्मक राह देगा। है क्षमता तुममें पर्वत समान, धन होता है कोमल तुम्हारा, लेकिन कैसे हो तुम मन से बलवान, कैसे न कहूं कि नारी तुम हो महान। शुभदा जी, डॉक्टर शालू, आप दोनों यहाँ पे आई, अपने विचार आपने बताए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमारे साथ जाएंगे। तो हमारी ऑडियंस, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने यहाँ पे आए और अपनी जो बातें हैं हमें बताएं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है आपके विचार हमारे इस कार्यक्रम के बारे में और हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा दी गई जानकारी ने क्या बदलाव लाया आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में, हमें जरूर बताएं। हमारा पता और हमारा ईमेल आईडी ये रहा।